जय धवला, पुस्तक 9वी, लेक्चर नंबर 10।
ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः।
नमो अरिहंताणं,
नमो सीताणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं। अनुभागभागमितो विजत्थदोषस्य संभवो नत्ति, कम्पनमियजिननाहम्
यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधोला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंडर भट्टारक तथा यतिशुभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। नौवीं पुस्तक जो बंधक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें संक्रमण की बात देखते हुए हम पृष्ठ संख्या 64 पर आगे 64 यहाँ अपने सन्निकर्ष का प्रकरण चल रहा है। किसी प्रकृति के उत्कृष्ट के साथ अन्य प्रकृतियों की क्या पोजीशन है, उसकी बात हमने देखी। अब जगन्य का सन्निकर्ष चल रहा है। तो वहाँ पूछा गया था कि जहाँ मिथ्यात्व का जगन्य है, वहाँ शेष कर्मों का क्या है। तो मिथ्यात्व का जगन्य कहाँ होता है, पहले नक्की करना है। सूक्ष्म निगोध लभ्य पर्याप्त है। हाँ, कभी कभी घोटाला होता है ना, हम सपना में सोचते हैं। हाँ, सोचते हैं। तो उसके साथ अन्य कर्मों की क्या पोजीशन होगी। तो जब वो सूक्ष्म निगोध लभ्य पर्याप्त है, तो उसके सत्ता में सम्यक तो समय मिथ्यात्व होगा भी और नहीं भी होगा। सत्ता में है तो उसका संक्रामक होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि वो आवली में प्रवेश कर चुका है तो नहीं संक्रामक होगा। और यदि संक्रामक है तो उत्कृष्ट का ही संक्रामक होगा, क्योंकि जहाँ उसकी सत्ता होती है वहाँ तो उसका अनुभाग उत्कृष्ट ही रहता है। यानी यहाँ हम उसको उत्कृष्ट नहीं कहेंगे, यहाँ अजगण्य कहेंगे, क्योंकि जगन्य के साथ हमें अजगण्य कहना है बस। परंतु है तो उत्कृष्ट, उसको कहेंगे वो अजगण्य है। अन्य कर्मों में से जो आठ बीच वाले आठ कषाय है, उसका जगन्य भी हो सकता है, अजगन्य भी हो सकता है, क्योंकि वो परिणाम विशेष के कारण हमने देखा था, उसमें थोड़ा डिफरेंस भी हो सकता है। और ये जो अजगन्य है वो छह स्थान प्रतीत होता है वहां पर। अन्य कर्मों का क्या होगा, तो नियम से अजगन्य ही होगा, क्योंकि अन्य कर्मों का जगन्य अन्य का तो सपना में है, अनंतानुबंधी का तो संयोजना में होता है। अब और वो कितना, वो तो अनंत गुणा अधिक होता है अजगन्य जो है।
देखा था ना।
हाँ, यहाँ षट्स्थान प्रतीत कैसे होगा, अनंत गुणा ही अधिक होगा। ये जो आठ कषायों का षट्स्थान प्रतीत बताया था, और ये जो अन्य है, क्योंकि वो तो सपना में
अनंत गुणा ही होगा,
तो सपना में जो जगन्य है उसकी अपेक्षा यहाँ पर अनंत गुणा है। ये तो हमने मिथ्यात्व के साथ लगाया। अब जहाँ सम्यक्व का जगन्य है, वहाँ किसी प्रकृति की सत्ता ही नहीं, ऐसे होगा कि नहीं होगा। अनंतानुबंधी मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता ही नहीं है, इसलिए उसका तो सवाल ही नहीं है। अब जो अन्य जो कर्म है, उसका अजगन्य का संक्रामक होता है, क्योंकि उनका जो जगन्य मिथ्या तो, और उसकी तो सवाल है ना। अन्य जो आठ कषायों का जगन्य कहाँ होता है, आठ कषायों में से बीच वाले आठ कषाय तो सूक्ष्म निगोध में होते हैं, और अन्य का तो सपना में होता है, उसकी अपेक्षा यहाँ अजगन्य पाया जाएगा। और वो भी जगन्य की अपेक्षा अनंत गुणा होगा। सम्यक मिथ्यात्व के जघन्य के साथ भी ऐसा ही कथन करना है, परंतु जहाँ सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य है वहाँ सम्यक प्रकृति का क्या है?
अजघन्य। हाँ,
उसका अजघन्य है, क्योंकि उसका जघन्य तो बाद में जाके होता है। अभी हम पढ़ेंगे 64 पृष्ठ पर पुरुष वेद के जघन्य अनुभाग के साथ। पुरुष वेदस्य जघन्य अनुभागम संकामेन्तो चदुन्नम कसायाणम नियमा अजहन्नम अनंत गुण बह्यम। पुरुष वेद के जघन्य अनुभाग का संक्रामक जीव नियम से चार कषायों के अनंत गुणे अजघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है, क्योंकि इन चार कषायों का संक्रमण
उसके पश्चात होता है।
हाँ, यानी उनकी क्षपणा पूरी होती है थोड़े आगे जाके अंतर्मुख के बाद, परंतु उतने काल में यहाँ अनुभाग अनंत गुना ज्यादा है, यानी इस अंतर्मुहूर्त में वो अनंत गुना घटने वाला है। यहाँ पर चार कषायों का ऐसा कहने पर चार संज्वलनों का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि पुरुष वेद के जघन्य अनुभाग संक्रम के समय शेष कषायों और नौ कषायों का सद्भाव नहीं पाया जाता। जहाँ पुरुष वेद की क्षपणा चल रही है वहाँ मात्र पुरुष वेद और चार संज्वलन ही बाकी है। अभी मोहिनी की बात कर रहे हैं, इसलिए जो यहाँ है उसके साथ सन्निकर्ष लगाएंगे। मात्र तब चार संज्वलनों के अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग का ही संक्रामक होता है, क्योंकि इनका कृष्टि रूप से जघन्य अनुभाग संक्रम आगे पाया जाता है, बाद में पाया जाता है। अभी तो वो पुरुष वेद की क्षपणा कर रहा है, इसलिए यहाँ पर उनके अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग संक्रम के होने में विरोध नहीं आता। ये बात ख्याल में आई ना, क्योंकि इसके आगे चलकर अंतर्मुख के बाद उसका जघन्य होने वाला है, इस पोजीशन पर वो अभी अनंत गुणा अधिक है। क्रोधादितीय उवरिल्लाणम संकामो नियमा अजघन्नम अनंत गुण भयम। क्रोधादि तीन संज्वलनों के जघन्य अनुभाग का संक्रामक जीव उपरिम संज्वलनों के अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग का नियम से संक्रामक होता है। एक ही सूत्र में सबको बता दिया अलग अलग। उपरिम संज्वलन का अर्थ क्या है?
क्रोध के साथ मान और माया।
हाँ, क्रोध के लिए अगर बात करेंगे तो मान माया लोग, मान का जहाँ जघन्य है वहाँ माया और लोग, माया का जहाँ जघन्य है वहाँ लोग की बात करें। लोग के जघन्य साथ कोई अन्य मोहनीय है ही नहीं है, तो कहीं सवाल ही नहीं सन्निकर्ष का। इसलिए कहते उपरिम जो बाकी बचे हैं संज्वलन उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं और वे वहां पर अनंत गुणे अधिक पाए जाते हैं। संज्वलन संज्ञा वाले क्रोधादि त्रिके यानी क्रोध मान और माया जघन्य अनुभाग संक्रम के समय पूर्ववर्ती सब प्रकृतियों का सन्निकर्ष नहीं है, क्योंकि उनकी क्षपणा पहले हो चुकी है, क्योंकि उनके सत्व से रहित उक्त जीव के उनका सन्निकर्ष मानने में विरोध है। हाँ, उपरिम प्रकृतियों का सन्निकर्ष है, क्योंकि क्रोध संज्वलन के जघन्य अनुभाग संक्रम के समय मान माया और लोभ संज्वलनों के मान संज्वलन के जघन्य अनुभाग संक्रम के समय माया और लोभ संज्वलनों के तथा माया संज्वलन के जघन्य अनुभाग संक्रम के समय लोभ संज्वलन के संक्रम का सद्भाव पाया जाता है। ये बात ख्याल में आई, ये वाक्य इसका अर्थ। वहां पर विवक्षित प्रकृति के जघन्य अनुभाग संक्रम के समय उक्त अन्य प्रकृतियों के अजघन्य अनुभाग के संक्रम का नियम है और वह अनंत गुणा अधिक होता है, ये भी नियम है। ये दोनों बातें सुगम है। लोह संज्वलने निरुद्धे नत्थि सन्नियासो लोभ संज्वलन के जघन्य अनुभाग संक्रम के समय अन्य प्रकृतियों का सन्निकर्ष नहीं होता, क्योंकि अन्य प्रकृतियां है ही नहीं वहां पर, मोहनी कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि वहां पर अन्य प्रकृतियां नहीं पाई जाती। यह सूत्र देशामर्शक है। शेष कषायों और नौ कषायों की मुख्यता से जघन्य सन्निकर्ष का इसी सूत्र से सूचन हो जाता है। अब इससे सूचित हुए अर्थ को प्रकट करने के लिए यहाँ पर उच्चारणा का कथन करते हैं। यथा जघन्य का जघन्य सन्निकर्ष का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग के संक्रामक जीव के सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व सत्कर्म कदाचित है और कदाचित नहीं। अभी अभी हमने याद किया था ना, सत्कर्म यानी उसकी सत्ता, क्योंकि 26 की सत्ता वाला होगा तो उसकी सम्यक सम्यक मिथ्यात्व है ही नहीं है। यदि है तो वह इनका कदाचित संक्रामक होता है। कदाचित क्यों कहा, यदि आवली में प्रवेश कर चुका है तो असंक्रामक है। यदि संक्रामक होता है तो नियम से अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है, क्योंकि उसका तो उत्कृष्ट ही रहता है थ्रू आउट। उसको हम अजघन्य कहे यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ जघन्य और अजघन्य ऐसी दो ही संज्ञाएं दे रहे हैं। वह मध्य की 8 कषायों के जघन्य अनुभाग का भी संक्रामक होता है और अजघन्य अनुभाग का भी संक्रामक होता है। यानी वो जघन्य भी हो सकता है अजघन्य भी, क्योंकि 8 कषायों का जघन्य भी
सूक्ष्म
निगोद में पाया जाता है। यदि अजघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है तो जघन्य की अपेक्षा 6 स्थान पतित अजघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है। शेष 8 कषाय ऊपर यहाँ बीच वाले 8 लिए, बाकी जो अनंतानुबंधि और संज्वलन और 9 कषायों के अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग का नियम से संक्रामक होता है। ये बात ख्याल में आई क्यों? क्योंकि इनका जघन्य एक तो विसंयोजना वाले के संयोजना में और दूसरे को क्षपणा में होता है। इसी प्रकार 8 कषायों के जघन्य अनुभाग के संक्रामक को विवक्षित करके सन्निकर्ष कहना चाहिए। ये कौन से 8 कषायों को?
अप्रत्याशन करते
हैं। हाँ, बीच वाले उसको एक एक को रखना और उसके साथ बाकी की तुलना सन्निकर्ष कहना। सम्यक्त के जघन्य अनुभाग का संक्रामक जीव 12 कषायों और 9 कषायों के अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है, क्योंकि इसके 12 कषाय किसको छोड़ा यहाँ पर?
अनंतानुबंधी,
उसकी सत्ता ही नहीं है। वह शेष का सत्कर्म वाला नहीं है, ये शेष का यानी अनंतानुबंधी मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व की उसके सत्ता नहीं है। सम्यक मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग का संक्रामक जीव सम्यक्व 12 कषाय और 9 कषायों के अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग का नियम से संक्रामक है। देखो अभी अंतर्मुहूर्त में क्षपणा होने वाली है, फिर भी जब सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य है तो सम्यक्व का अनंत गुणा अधिक वाला है, अधिक है उसके अपने जघन्य से, क्योंकि उसका जघन्य तो कृतकृत्य वेदक के लास्ट अंतिम आवली प्लस एक समय में पाया जाएगा संक्रामक। वह शेष प्रकृतियों के सत्कर्म से शासक रहित है। शेष यानी इसके लिए अनंतानुबंधी और
मिथ्यात्व।
अनंतानुबंधी क्रोध के जघन्य अनुभाग का संक्रामक जीव, ये इसका जघन्य कब होता है प्रतिभाताई? अनंतानुबंधी का जघन्य संक्रामक, हाँ संयोजना के अवली बात, विसंयोजना के वहां तो असंक्रामक था, संयोजना के पहले समय में जघन्य अनुभाग का बंध किया, अवली के बाद उसका संक्रमण करेगा। तो जहां अनंतानुबंधी के क्रोध का जघन्य है उसके साथ अन्य कषायों की या अन्य जो मोहनीय दर्शन मोहनीय की बात है, वहां 3 दर्शन मोहनीय 12 कषाय और 9 कषायों के अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग का नियम से संक्रामक होता है। अब अकेला क्रोध को लिया, उसके साथ अनंतानुबंधी क्रोध को यहाँ लिखा है ना,
मान
माया लोक की क्या पोजीशन है? तो कहते हैं अनंतानुबंधी मान आदि 3 के जघन्य अनुभाग का भी संक्रामक होता है और अजघन्य अनुभाग का भी संक्रामक होता है। यदि अजगन्य अनुभाग का संक्रामक होता है तो जगन्य की अपेक्षा छह स्थान पतित अजगन्य अनुभाग का संक्रामक होता है, यानी जहाँ क्रोध का जगन्य है हाँ उसके अलग अलग हो गए स्थिति ने अनुभाग की अनुभाग के कांड, क्योंकि जो बंद हुआ है
यह क्रोध का
एट ए टाइम चारों का बंद हो रहा है, अनंत अनुबंधी चारों का बंद पहले ही समय में हुआ है और वो कहेंगे वो वहां जगन्य बनता है, ये भी परिणामवश क्रोध का जगन्य बंदा, बाकी का जगन्य भी बन सकता है अजगन्य भी बन सकता है, और जो अजगन्य वो छह स्थान पतित भी हो सकता है क्योंकि आवली के पश्चात उसका संक्रमण होगा
या जिसके उदय के साथ उसका संयोजन होगा, उसकी संयोजन होगा उसका अनुभव ज्यादा होगा कि कम होगा,
किसके उदय के साथ बंधेगा उसकी बात चल रही है
क्या, क्रोध या मान या माया और लोभ,
आपका क्या कहना है किसका उदय है?
अनंतानुमति क्रोध का उदय नहीं, संयोजना की उसने
हाँ,
तभी तो उसके पहले समय में क्रोध का उदय हुआ,
किसके
अनंतानुबंधी,
अनंतानुबंधी का उदय आवली तक नहीं है,
नहीं आवली तक नहीं है, जब भी संयोजना करता है तभी क्रोध का, क्रोध से उसका क्रोध का उदय चल रहा है,
नहीं अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन का चल रहा है, अनंतानुबंधी का है ही नहीं, आवली काल तक उदय नहीं है, अनंतानुबंधी रहित है ये मिथ्या तो दशा में,
पर वो टर्न होकर उदय में आता है
नहीं, मात्र शासाधन में ये बात होती है अन्यत्र कहीं नहीं, शासाधन में उदय चलता है उसी समय से नया बंद होता है परंतु संक्रमण की अपेक्षा से वहाँ उदय भी शुरू होता है, ये एक ही एक्सेप्शन है, मिथ्यात्व में आवली काल तक अनंतानुबंधी का उदय ही नहीं है,
नहीं तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का क्रोध का होगा तो तभी बाकी का जगन्य होगा, हो सकता है कि इसका जगन्य होगा,
ऐसा नहीं, जो बंधने वाला जो अनुभाग है उस रूप संक्रमित होते हैं, इसलिए वैसा भी हम नहीं कहते कि क्रोध का उदय है और वो बाकी क्रोध है वो संक्रमण की अपेक्षा उसका अधिक हो रहा है, ऐसा भी नहीं कह सकते, अभी परिणाम विशेष से जो बंध रहा है उसको, यानी क्रोध मान माया लोभ चारों ही का बंध है परंतु उसमें अनुभाग में थोड़ा वेरिएशन होगा, वही तो मात्र 21 के बंद की बात है, ऐसा ही है स्वरूप ही ऐसा है, वो 21 के वहाँ लिखा भी है 21 प्राकृतिक जहाँ वो बंद स्थान है वहाँ तो ये बात होती है, शासाधन में होती यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि शासाधन होता ही अनंतानुबंधी के उदय से, इसीलिए किसी आचार्य का मत है विसंयोजना करने वाले को वो आता ही नहीं, और इसलिए उपशम काल में विसंयोजना भी नहीं मानी उन्होंने, ऐसे दो मत है ना उसमें,
यह उदय स्थान 22 वाला होगा ना,
मिथ्यात्व में उदय 22 का है, बंद 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 की बात है उदय की नहीं,
अच्छा
उदय 8 9 10 11 से ज्यादा नहीं होता, 8 9 10
8 9 10
होते हैं और अनंतानुबंधी रहित में तो 8 का उदय चलेगा, 8 9 9 10 ऐसा कुछ होगा उसमें, 8 का होगा 7 का होगा, एक मिथ्यात्व
का होगा, एक
तीन कषाय,
तीन कषाय,
एक वेद, एक युगल,
एक युगल और
सात आठ आठ नौ होगी, भयजुगुप्सा नहीं होगी तो सात ही कर्मों का उदय होगा, एट ए टाइम मोहनी के, अकेले भय का होगा तो 8 का, अकेले जुगुप्सा है तो भी 8 का, भयजुगुप्सा दोनों का होगा तो
9
का, और अनंतानुबंधी सहित वाले में
10 का हो जाएगा,
उसमें 8 9 9 10 ऐसे चार कूट करते हैं ना, उदय के कूट करते हैं हम, उसमें चार होते हैं, हाँ अभी अभी उदय के कूट थोड़े लिए थे, अभी थोड़ा एक ही घंटा लिया था लास्ट, आप थे ना, देखो इसी प्रकार अनंतानुबंधी मान आदि तीन कषायों के जगन्य अनुभाग को मुख्य कर सन्निकर्ष कहना चाहिए, एक एक को वहां रखना, अभी हमने अनंतानुबंधी क्रोध के साथ अन्य तीन अनंतानुबंधी को भी लगाया और अन्य कषायों को भी लगाया, दर्शन मोहिनी को भी लगाया, बाकी सब तो अजगन्य ही वहां थे, एकमात्र वो एक हमने जिसको लिया है उसको जगन्य रखा, अनंतानुबंधी के जो अन्य तीन है वो जगन्य भी हो सकते हैं, अजगन्य भी हो सकते,
अजगन्य होगा तो,
और बाकी सारे तो अजगन्य ही है। अन्य जो है वो अनंत गुण है, इसके साथ हो सकते हैं उसको तो छह स्थान पति दिए और बाकी सबको अनंत गुण अधिक बताया। अब क्रोध संज्वलन का जहां जगन्य है, तो क्रोध संज्वलन के जगन्य अनुभाग का संक्रामक जीव शेष तीन संज्वलनों के अनंत गुणे अधिक अजगन्य अनुभाग का नियम से संक्रामक होता है, क्योंकि अनंत अनुबंधी का जगन्य तो एट विशेष एक पोजीशन पर होता है और इसका तो आगे आगे अंतर्मूर्त चल कर जाएगा क्योंकि क्षपणा में हो रहा है। तो जहाँ क्रोध का जगन्य है संज्वलन का
मान माया लोक,
मान माया लोक का अनंत गुणा है, अजगन्य है अनंत गुणा अधिक है, वह शेष प्रकृतियों के सत्कर्म से रहित है, क्योंकि जहाँ क्रोध संज्वलन का संक्रमण चल रहा है अंतम जघन्य वाला, यानी उसका लास्ट पॉइंट है, अभी नवक प्रबद्ध का भी वो अंतिम पॉइंट है, अब वहाँ सत्ता में कौन रहे हैं, मान माया और लोभ ही रहे, अन्य की सत्ता ही नहीं है, पहले क्षपणा हो चुकी है, क्षपक श्रेणी में हम देख रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि शेष प्रकृतियों के सत्कर्म से रहते हैं, उनकी सत्ता ही नहीं रही। मान संज्वलन के जगन्य अनुभाग का संक्रामक जीव माया आदि दो संज्वलनों के अनंत गुणे अधिक अजगन्य अनुभाग का नियम से संक्रामक होता है, वह शेष प्रकृतियों के सत्कर्म से रहित है। अभी तो हमने देखा था ना मूल चुन्नी सूत्र की टीका में भी इसको विस्तार से देखा था। माया संज्वलन के जगन्य अनुभाग का संक्रामक जीव लोभ संज्वलन के अनंत गुणे अधिक अजगन्य अनुभाग का नियम से संक्रामक होता है, क्योंकि इसका तो नवे गुण स्थान में है, अभी वो नवे गुण स्थान में ही बादर लोभ बचेगा और फिर जाके वो दसवें गुण स्थान में अंत में वो सूक्ष्म होगा, जघन्य होगा। हाँ, माया संज्वलन के जघन्य अनुभाग का संक्रामक जीव लोभ संज्वलन के अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग का नियम से संक्रामक होता है, वह शेष प्रकृतियों के सत्कर्म से रहित है, और लोभ संज्वलन के जघन्य अनुभाग का संक्रामक जीव शेष प्रकृतियों के सत्कर्म से रहित है, मात्र एक लोभ ही बची है और उसका भी संक्रमण आवली प्लस एक समय है तब चल रहा है उसका। नपुसक वेद के जघन्य अनुभाग का संक्रामक जीव सात नौ कषायों और चार संज्वलनों के अनंत गुणे अधिक अजगन्य अनुभाग का नियम से संक्रामक होता है, और स्त्री वेद के जघन्य अनुभाग का नियम से संक्रामक होता है, क्योंकि नपुसक वेद का जघन्य किसके है, नपुसक वेद के उदय से ही चढ़ने वाले के, जहाँ क्योंकि वो स्त्री वेद की भी क्षपणा चालू थी उसकी और नपुसक वेद की भी चल रही थी उसकी, इसलिए वहां वो स्त्री वेद का भी जघन्य अनुभाग का संक्रामक है, वह शेष प्रकृतियों के सत्कर्म से रहित है।
यहाँ पे ये नपुसक वेद का जो संक्रामक है वो एक आवली प्लस एक समय पहले होगा,
एक आवली प्लस एक समय
नहीं, यहाँ तो फाली रूप, अच्छा इसकी
फाली बताए ना, स्त्री वेद नपुसक वेद
उसका फाली रूप होता है।
पुरुष वेद में इसलिए अलग लिया था कि उसका तो नवक समय प्रबद्ध बाद में क्षपणा होते हैं, इसके तो पुरुष वेद बन रहा है ना, यानी नपुसक वेद तो सत्ता में से नष्ट होगा उसी समय। ना सात में सात नौ कषायों का
अनंत गुण तो स्त्री वेद
के तो सत्ता नहीं, उसका तो जगन्य बताया स्त्री वेद को, पुरुष वेद और छह नौ कषाय इसके बाद किसकी क्षपणा होगी, पुरुष वेद और छह नौ कषाय, क्योंकि स्त्री वेद इसके साथ साथ चला जाएगा। हाँ एक साथ दो मत है उसमें भी, एक समय के लिए सत्ता है ऐसा भी एक मत है। अभी अभी तो यहाँ सन्निकर्ष उच्चारणाचार्य में दोनों को एक साथ ले लिया, नहीं तो ऐसा भी कहते ना, एक समय पहले स्त्री वेद की क्षपणा होती है,
इसीलिए मैंने पूछा कि सत्ता में नहीं होगा, पर यहाँ पे जगह ने बताया,
जगह ने बता दिया है,
वो अंतर्भूत की अपेक्षा ले सकते हैं ना, दोनों का अंतर्भूत
सत्ता में है, वहाँ पर भी संक्रमण नहीं होगा इस अपेक्षा से भी कहेंगे।
नहीं वहाँ पे भी अंतर्भूत खाली रूप ही उसका,
जगह ने तो खाली रूप से ही है, परंतु लास्ट में कावली प्रमाण रहता है कि नहीं रहता है,
इसका अंतर्मूर्त तक जगन्य चलेगा, इसका भी अंतर्मूर्त,
क्योंकि फाली रूप से तो अंतर्मूर्त चलता
है,
तो जब उसकी फाली चल रही तो इसकी भी फाली
चल रही है।
ये वेदों के बारे में बहुत कंफ्यूजन चलता है ना, और उसमें दो दो अलग अलग मान्यता है, तो और कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ता है। ये तो नपुंसक वेद का जगन्य बता दिया, अब जहाँ स्त्री वेद का जगन्य है तो कहाँ है, तो श्रीवेद के सहित उदय सहित चढ़ने वाले के उसकी क्षपणा में अंत में है, और वो अंतर्मूर्त तक चलेगा उसका उसका जगन्य, तो वो जीव सात नौ कषाय, उसके तो नपुंसक वेद की सत्ता ही नहीं है, आठ कषाय और वो सब पहले उसने कृपा दिया, और एक क्षपक है, तो ना दर्शन मोहनी है, ना अनंतानुबंधी है, ना नपुंसक वेद है, ना आठ कषाय है, तो क्या है अभी सात नौ कषाय और चार संयोजन इतने ही बचे हैं, उसके बाद क्षपणा होने वाले।
नहीं इसका अंतर्मूर्त तक हम लोग श्रीवेद का पकड़ेंगे तो उसका भी अंतर्मूर्त चलता है, इसका भी, तो इसका शायद सत्ता हो भी सकती है।
किसकी?
नपुंसक वेद
ना, श्रीवेद और पुरुष वेद सही चढ़ने वाले नपुंसक वेद के अंतर्मूर्त पहले क्षपणा पूरी कर देते हैं, वो तो नपुंसक वेद वाले के लिए बराबर लिया, श्रीवेद के वाले के नहीं। नहीं नपुंसक वेद वाला जब क्षपणा करता है, देखो जहाँ पहले हम पुरुष वेद की बात समझेंगे, जो पुरुष वेद सही चढ़ता है पहले नपुंसक वेद की क्षपणा पूरी करता है, फिर स्त्री वेद की क्षपणा यहाँ पर पूरी होगी, और फिर पुरुष वेद की क्षपणा यहाँ पर पूरी होगी, उसका उदय भी चाहिए, उसका जो नवक बंद है तो उसकी क्षपणा तो बाद में भी चलती है। अब यहाँ श्रीवेद सहित चढ़ने वाले ने नपुंसक वेद की सत्ता तो पहले ही मिटाई है, श्रीवेद वाले ने भी, डिफरेंस कहा है, जो नपुंसक वेद सहित चढ़ता है ना, तो उस नपुंसक की वेद की क्षपणा यहाँ से शुरू तो की, परंतु वो समाप्त नहीं होगी, वो यहाँ तक जाके श्रीवेद के साथ समाप्त हो जाएगी, दोनों एटीट्यूड, यानी पहले इसने यहाँ से नपुंसक वेद की क्षपणा शुरू की, यहाँ से लेकर श्रीवेद की क्षपणा शुरू की, अब यह दोनों की एक साथ हो रही है और दोनों की यहाँ एक साथ समाप्त होगी। अब उसमें एक मत है कि एक समय के लिए उसकी सत्ता अधिक रहती है, उसको अभी हम गौण करेंगे।
पुरुष वेद के क्या होगा?
पुरुष वेद जो सही, इसके पुरुष वेद की बात चल रहे,
स्त्री वेद वाले
स्त्री वेद के क्षपणा होगी ना, अपगत वेदी होगा, तो छह नौ कषाय और पुरुष वेद का एट ए टाइम उसकी दोनों की क्षपणा करता है, इसलिए उसके तो दोनों के एट ए टाइम समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उसका जो नया बंधा है, यहाँ का नया बंधा पुरुष वेद है, वो छह नौकरशाय के साथ वो भी चला जाता है, परंतु जो पुरुष वेद सही चढ़ता है उसने यहाँ से लेकर छह नौकरशाय की क्षपणा शुरू कर दी है, परंतु वो छह नौकरशाय की क्षपणा पूरी होने के पश्चात भी नया बंधा हुआ पुरुष वेद बाकी है।
नहीं, मैं क्या सोच रहा था कि जो श्रीवेद की क्षपणा करता है वो लास्ट अंतर्मुख की जगने हो जाता है, जबी वो लास्ट अंतर्मूर्त में उसका जगन्य होता है तभी नपुंसक वेद का भी जगन्य होता
है। बिल्कुल नहीं होता, उसकी सत्ता ही नहीं है, वही तो कह रहे हैं। लास्ट अंतर्मूर्त ने लास्ट अनुभाग कांडक,
हाँ अनुभाग कांडक का जो अंतर्मूर्त तो है,
श्री वेदी ने नपुंसक वेद की क्षपणा यहाँ पूरी की,
हाँ।
उसके बाद उसके हजारों अनुभाग कांडक हो गए, हाँ। क्या सत्ता है? कहाँ? श्रीवेद के जगन्य अनुभाग का संक्रामक जीव सात नौ कषाय चार संयोजन के अनंत गुणे अधिक अजगण्य अनुभाग का नियम से संक्रामक होता है, नियम हुआ है, नियम से। नपुंसक वेद कदाचित है, यदि है तो नियम से उसके जगन्य अनुभाग का संक्रामक होता है, तो वो भी कदाचित है, क्यों कहा फिर? हाँ? नहीं पर है कहीं, क्यों नहीं कहा? अंतर्मूर्त तक वो एक ही कांडक चला उसका, क्योंकि अभी तक हमने ऐसे ही पढ़ा एक अंतर्मूर्त पहले उसकी सपना पूरी हो जाती है। ठीक है, अभी यहाँ जो लिखा है उसी को मानेंगे हम। तो नपुंसकवेद कदाचित है कहा ये पर?
वो उसका अंतर्मूर्त जो सपना का काल है।
नहीं वो है ऐसा क्यों नहीं कहा, कदाचित है क्यों कहा?
कदाचित है, कदाचित नहीं उसका
कदाचित नहीं है,
उसका कांडक पहले पूरा हो जाएगा। इसका कांडक
कदाचित नहीं है, कैसा घटित करेंगे?
इसका कांडक पूरा हो गया और वो नष्ट हो गया सत्ता में से।
हाँ ठीक है। अच्छा नीचे है और वो ऊपर नहीं है, यानी उसका पहले जो
कांडक जो दोनों का, हाँ इसका कांडक पहले पूरा हो गया,
कांडक चल रहा है उसके काल में इसकी सपना
पूरी हो गई। हाँ।
तो नीचे है और ऊपर नहीं है।
नीचे ऊपर
नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ जो नपुंसक वेद का समाप्त तो हुआ, तो इसके पहले इसका कांडक शुरू हुआ स्त्री वेद का, तो इतने पोजीशन में इसका भी जघन्य है। इसके ये अंतिम कांडक इसका इतना है मान लेते हैं, और इसका कांडक यहाँ से शुरू हुआ, तो इन दोनों में दोनों की सत्ता है, इसका भी जघन्य, इसका भी जघन्य। ऊपर इसका जघन्य है परंतु इसका
सत्ता ही नहीं है।
ऐसे ही लेना पड़ेगा आपको। शेष प्रकृतियों के सत्कर्म से रहित है। हास्य प्रकृति के जघन्य अनुभाग का संक्रामक जीव, नियम से 5 नौकशाओं के जघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है। यहाँ तो सबको एक साथ ऐसा किसी के कम ज्यादा ऐसा नहीं कहा यहाँ। पुरुष वेद और 4 संज्वलनों के अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग का नियम से संक्रामक होता है। जहाँ हास्य का जघन्य चल रहा है वहाँ की बात चल रही है। वह शेष प्रकृतियों के सत्कर्म से रहित है। अभी यहाँ पुरुष वेद का नियम से जो बताया है, अच्छा यानी स्त्री वेद वाले के भी वो तो हास्य के साथ ही पुरुष वेद चला जाएगा, फिर भी उसका अजगण्य है वहां पर। इसी प्रकार शेष 5 नौकशाएं के जगन्य अनुभाग संक्रम को मुख्य कर सन्निकर्ष कहना चाहिए। पुरुष वेद के जगन्य अनुभाग का संक्रामक जीव नियम से 4 संज्वलनों के अनंत गुणे अधिक अजगण्य अनुभाग का संक्रामक होता है। वह शेष प्रकृतियों के सत्कर्म से रहित है। इसी प्रकार ओघ सन्निकर्ष के समान मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुष्यनियों में नपुंसक वेद के जघन्य अनुभाग का संक्रामक जीव नियम से स्त्री वेद के अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है। अभी इसका अर्थ क्या हुआ?
यहाँ पे नष्ट होता है।
अभी स्त्री वेद सही चल रहा है, जहाँ उसने नपुंसक वेद का जघन्य किया वहाँ स्त्री वेद का जघन्य नहीं हो सकता है, वो अनंत गुणे अधिक बताया। बात आई ना, वहाँ जो बात कही थी वो यहाँ घटित नहीं होती है। हाँ, और स्त्री वेद के जघन्य अनुभाग का संक्रामक जीव नपुंसक वेद के सत्कर्म से रहित है, वही तो मैं वहां जो बता रही थी। पुरुष वेद का भंग 6 नौकशायों के समान है। ऊपर क्या लिखा है? नू से सिया अथी जदि अथी नियम जहन यानी ये दोनों ही आपस में टकरा रहे हैं ना कथन। हाँ
ये 15वीं बुक पढ़ लेनी चाहिए।
हाँ
एक बार तो देखा था पर
एक बार सभी पढ़ेंगे फिर दोबारा पढ़ेंगे।
नहीं एक बार तो मैं पढ़ के आया था तभी मैंने कुछ पढ़ा पर अभी कुछ याद भी नहीं है। हाँ नहीं इसके 15वीं तो इसमें। हाँ
देखो अभी हम आगे बढ़ेंगे। आदेश से नारकियों में मिथ्यात्व के जगन्य अनुभाग के संक्रामक जीव का भंग अनुभाग विभक्ति के समान है। इतनी विशेषताएं की सम्यक प्रकृति कदाचित है। नारकियों में मिथ्यात्व का जगन्य किसके होगा? असंगी से आया हुआ है। असंगी के योग्य हत समुत्पत्ति करके आया है। और सम्यक प्रकृति है असंगी से आया है और है का अर्थ क्या है? उद्वेलना कर रहा है। यदि है तो क्या होगा? उसका कदाचित संक्रामक है। क्यों? यदि आवली में प्रवेश कर चुका है लास्ट तो उसका असंक्रामक है। और यदि संक्रामक है तो क्या होगा?
अनंत गुण
नियम से अनंत गुण आदि अजगण्य अनुभाग का संक्रामक है। वो है तो उत्कृष्ट परंतु जगन्य के सामने उसको हम अजगण्य कहेंगे और वो कितना है तो अनंत गुण अधिक है। इसी प्रकार 12 कषाय और 9 कषायों के जगन्य अनुभाग संक्रम को मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए। सम्यक्त और अनंतानुबंधी चतुष्क के जगन्य अनुभाग के संक्रामक की मुख्यता से भंग अनुभाग विभक्ति के समान है। सम्यक्त का जगन्य कब होता है? तो आवली प्लस एक समय बाकी कृत्य कृत्य वेदना वेदक में तभी नारकी की बात चल रही है। अनंतानुबंधी का जगन्य तो हमने देखा वो तो जैसे ओग में होता है वैसे यहाँ पर भी होता है। इसी प्रकार पहली पृथ्वी सामान्य तिर्यंच पंचेंद्रिय तिर्यंच द्विक क्योंकि योनिमति में तो कृतकृत्य वेदक है ही नहीं है और देवगति में सामान्य देवों में जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार योनिनी तिर्यंच भवनवासी और व्यंतर देवों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें सम्यक्त्व का भंग नहीं है। भंग नहीं है उसका वो तो जगन्य वाली बात घटित नहीं होती है। वहां पर जगन्य अजगन्य दोनों घटित नहीं हो गए अजगन्य। अभी वहां जो हमें अर्थ नहीं लग रहा था ना सम्यक मिथ्या तो नहीं है निकालो। हमने अनुत्कृष्ट नहीं ऐसा कहा। वहां क्या लिखाना है देखो वहाँ। हाँ पेज नंबर है 59 पर 59 वो हम सन्निकर्ष लगा रहे थे। हम वहाँ जो लिखा ना इतनी विशेषता है कि सम्यक मिथ्या तो प्रकृति नहीं है। सम्यक मिथ्या तो का भंग नहीं है ऐसा होगा वहाँ पर। उसका अनुत्कृष्ट नहीं है ने? वहाँ उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट की बात चल रही थी। अनुत्कृष्ट है ही नहीं तो उसके उत्कृष्ट के साथ भंग कैसे लगाएंगे? यानी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट दोनों बताना था। हमने वहाँ लिख लिया अनुत्कृष्ट नहीं है। जैसे यहाँ क्या लिखा है देखो इसके साथ फिर दोबारा कंपेयर करेंगे। यहाँ लिखा है कि इनमें सम्यक्त्व का भंग नहीं है। सम्यक्त्व के जगन्य के साथ कंपेयर करने के लिए सम्यक्त्व का जगन्य होता ही नहीं है। वैसे वहाँ
सम्यक मिथ्यात्व का जगन्य
सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट के साथ
होगा।
उसका भंग नहीं है। अनुत्कृष्ट नहीं है देखो उसका भंग नहीं है। यहाँ भी सम्यक्त्व का अजगन्य तो है परंतु जगन्य नहीं है तो उसके साथ कंपेयर करने की कोई सवाल ही नहीं है। वैसे वहां अनुत्कृष्ट है ही नहीं उत्कृष्ट ही है जो कुछ है वो। अब आगे पढ़ेंगे दूसरी पृथ्वी से लेकर 67 पेज पर सातवीं पृथ्वी तक के नारकियों में मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग के संक्रामक जीव के अनंतानुबंधी चतुष्क कदाचित है। लक्ष्मी बहन ये जघन्य कौन है? अनंतानुबंधी के सॉरी मिथ्यात्व का जघन्य वाला कौन है? नरक में, नरक में बात चल रही है ना, दूसरी पृथ्वी से सातवीं पृथ्वी में। हाँ बहुत अच्छा। अनंतानुबंधी की जो विसंयोजना करता है उसके अन्य प्रकृतियों का जघन्य होता है। अनुभाग कांड घात हुए हैं वहाँ पर, वहाँ यही एक क्रिया है ना कि जिसमें जघन्य हो सकता है। प्रथमोपशम के काल में होगा परंतु उसके उपरांत और उसने विसंयोजना भी की है तो उसका और घट गया है। तो जघन्य किसके होगा? अनंत अनुबंधी के विसंयोजना करने।
यहाँ पे इसीलिए अनंत चतुष्क कदाचित है।
हाँ अभी आप ही उसका अर्थ बताओ।
संयोजना
मिथ्यात्व का तो जघन्य हो गया है।
हाँ। हाँ। संयोजना करेगा तो अंतर्भूत तक उसका जो
जघन्य उसको दो प्रकार से देखा।
अच्छा एक आवली के
देखो जहाँ जहाँ संयोजना करेगा।
हाँ, एक अवली के पश्चात
देखो देखो हम अनंत मिथ्यात्व के जघन्य के साथ ले गए। हाँ, ले रहे हैं।
हाँ,
तो वहाँ मिथ्यात्व का जघन्य ही रहेगा?
नहीं रहेगा, संयोजना करेगा तभी जघन्य नहीं रहेगा।
तो मिथ्यात्व का जघन्य कब होता है? जब अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर रहा है। तो विसंयोजना करते करते जब अनंतानुबंधी आवली में प्रवेश कर चुका है
तो उसका संक्रामक ही नहीं है।
तो उसका सत्ता है परंतु संक्रामक नहीं है। ख्याल में आती बस? विसंयोजना करते हुए भी कांडघात होते हैं, अंतिम कांडघात होने पर आवली में जब प्रवेश कर चुका है तब उसका सत्ता उसकी है परंतु संक्रमण नहीं है।
और उसके पहले
इसलिए क्या लिखा?
कदाचित है।
यदि यहाँ कहा गया अनंतानुबंधी चतुष्क कदाचित है, कदाचित है यानी सत्ता है। यदि है तो कदाचित संक्रामक होता है। सत्ता है तो ऐसा भी है ना, सत्ता है और संक्रमण नहीं हो रहा है क्योंकि उसका जो अंतिम अनुभाग कांड घात हो रहा है पूरा उसका मिथ्यात्व का अनंतानुबंधी की विसंयोजना में अन्य प्रकृतियों के भी अनुभाग कांड घात हो रहे हैं। ख्याल में आती ना? तो वहां कदाचित संक्रामक है कदाचित नहीं, दोनों बात आ गई अनंतानुबंधी की। और यदि संक्रामक होता है तो जघन्य अनुभाग का भी संक्रामक होता है और अजघन्य अनुभाग का भी संक्रामक होता है।
तो यहाँ तो जघन्य ये बीच संयोजना कर रहा है तभी भी उसका जघन्य बताया है।
अनंतानुबंधी का जघन्य बताया उसको। और यदि अजघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है तो जघन्य की अपेक्षा छह स्थान पतित, एक तो एक्स्ट्रा हुआ पतितत हुआ, पतित हाँ विसंयोजना करण परिणाम से होती।
अंतर्मुख तक उसका जगह
मिथ्यात्व का जघन्य इसकी विसंयोजना पूरी होने पर होता है।
हाँ अंतर्मुख तक जगन्य रहेगा तभी तक में संयोजना भी हो सकती है। विसंयोजना के काल में नहीं होगा, बराबर है ना?
विसंयोजना के काल में
वहाँ पे करण परिणाम चल रहा है,
हो गए ना वो करण परिणाम से भी तो तभी तो विसंयोजना पूरी हो गई।
हाँ तो विसंयोजना पूरी हो गई। हाँ। तो सत्ता में से निकल गया जब इसका
मिथ्यात्व का जगन्य हो गया अनंतानुबंधी की विसंयोजना वाले के मिथ्यात्व का जगन्य। हाँ तो संक्रामक में दोनों लिए ना, यदि संक्रामक है तो जघन्य अनुभाग का भी संक्रामक होता है और अजघन्य अनुभाग का भी संक्रामक होता है। यानी ऐसा लेना पड़ेगा वो तो एक अंतर्मूर्त तक इसका जघन्य रहा, संयोजना होने पर मिथ्या तो जघन्य रहा और अनंतानुबंधी आवली के बाद
संक्रामक हो गया
तो जघन्य का एक समय के लिए।
हाँ।
और बाद में अजघन्य रहा, एक समय के लिए जघन्य और बाकी अजघन्य, ऐसे लेना पड़ेगा। अभी, और जघन्य की अपेक्षा वो छह स्थान पतित अजघन्य का, अजघन्य है तो छह स्थान पतित है।
ये जब विश्वयुद्ध के काल में अंतिम कारक होता है और आवली में प्रविष्ट होता है तभी उसका
नहीं,
कर्म पर
यहाँ संयोजना में लिया
नहीं, पर विश्वयुद्ध के काल में भी जब भी वो अंतिम आवली में प्रविष्ट होता है तभी उसकी कर्म परिणाम तो पूरा हो गया, अभी आवली में प्रविष्ट हो गया।
आवली में तो असंक्रामक ही है।
हाँ, असंक्रामक है। हाँ। तो वहाँ पे उसका जघन्य हो गया तो उसका उतना अंतर्भूत लंबा चलेगा, वापस संयोजना करेगा वापस आवली के पश्चात।
मिथ्यात्व का जघन्य हो गया ना।
हाँ।
तो अनंत अनुबंधी की विसर्जना में लंबे काल तक रहा तो मिथ्यात्व का जगह नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा। हमने तो देखा ना छासर सागर, दो छासर सागर तक वो जगह नहीं रह सकता है क्योंकि मिथ्यात्व में आकर नया बंध अधिक होगा तो ही उसका जगह नहीं होगा, वो भी आवली के बाद। ख्याल में आते हैं बात।
तो इसे तो लेगी तो जो श्रेणी में से जो 24 की सप्ताह वाला जो श्रेणी चढ़ा है उसका और कम हो जाएगा और पीछे वो विसर्जना करेगा।
क्या 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 क्या
श्रेणी में के श्रेणी जो 24 की सप्ताह वाला जीव चढ़ता है।
हाँ।
वहाँ पे उसका और कांडक हो जाएगा, नीचे आएगा पीछे विसर्जना करेगा तो उसका जगह नहीं होगा।
श्रेणी कैसे चढ़ेगा वो, अनंतानुबंधी की सत्ता ही नहीं है।
नहीं, अनंतानुबंधी की सत्ता नहीं है।
हाँ।
पर मिथ्यात्व की सत्ता वाला श्रेणी चढ़ेगा तो वहाँ पे उसका और कांडक आ, क्योंकि वहाँ पे संक्रमण होता रहता है।
अब दूसरे से सातवीं पृथ्वी की बात।
अच्छा सॉरी। नहीं
हाँ, उसका बंद हुआ तो भी आवली के बाद उसका संक्रमण होगा, इसलिए उसमें छह स्थान पतित वाली बात। ये हमें अनंतानुबंधी एक के साथ हमने अन्य को भी जघन्य अजघन्य लेते हैं, वैसे इसके साथ भी ले सकते हैं आप। जहाँ हमने एक अनंतानुबंधी क्रोध को जघन्य रखा वहाँ मान माया लोभ भी जघन्य अजघन्य दोनों हो सकते, वैसे यहाँ पर भी ले सकते हम। विसर्जना के काल में मिथ्यात्व का जघन्य कर दिया, नरक की बात चल रही। अब संयोजना की, तो जैसे अनंतानुबंधी का बंध किया है मिथ्यात्व का भी नया बंध हो रहा है।
हाँ।
वो अनुभाग ज्यादा बंधा सत्ता में, उससे अनुभाग हाँ। ज्यादा बंधा हम कहेंगे तो उसके भी आवली के बाद होगा ना उसका संक्रमण।
हाँ। दोनों का साथ में। हाँ।
तो उसका जघन्य या अजघन्य दोनों हो सकते, ये बात बता रही। अरविंद कहते हैं हम नरक में हैं अभी। देखो अभी आगे 12 कषाय और 9 कषाय उनके नियम से जघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है। जहाँ मिथ्यात्व को जघन्य कर दिया, कोई विसर्जना के बाद की बात। इसी प्रकार 12 कषाय और 9 कषायों के जघन्य अनुभाग संक्रम को मुख्य कर सन्निकर्ष कहना चाहिए।
यहाँ पे हमने अनंत अनुबंधी में वेरिएशन देखा, पर 12 कषाय का नियम से जघन्य वाला होता है।
हाँ। क्योंकि एक तो अनंत अनुबंधी में विसर्जना में आवली काल में असंक्रामक है, उसको भी कंसिडर करना है। और जहाँ मिथ्यात्व का जघन्य हो गया वहाँ पर उल्टी अपेक्षा से भी हमने लगाई थी, अनंतानुबंधी की संयोजना वाला को भी लिया था वहाँ पर। अनंतानुबंधी चतुष्क के जघन्य अनुभाग संक्रम को मुख्य कर भंग अनुभाग विभक्ति के समान है, इसी प्रकार ज्योतिषी देवों में जानना चाहिए, क्योंकि वहां भी वो कुछ वेदक वगैरह जो घटित नहीं होते उसकी अपेक्षा से। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त जीवों में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है, सब में अनुभाग विभक्ति के समान बता दिया। सौधर्म कल्प से सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है, इतनी विशेषता है कि अप्रत्याख्यान क्रोध के जघन्य अनुभाग के संक्रामक जीव के सम्यक तो सत्कर्म कदाचित है। यदि है तो वह कदाचित संक्रामक है, और यदि संक्रामक है वह जघन्य अनुभाग का भी संक्रामक होता है और अजघन्य अनुभाग का भी संक्रामक होता है, और यदि अजघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है तो जघन्य से अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? एक कहाँ की बात चल रही है? सौधर्म से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में, सौधर्म से सर्वार्थ सिद्धि तक के, वहाँ अप्रत्याख्यान का जघन्य किसके होगा?
विश्व योजना के पश्चात जो सपना करेगा, सपना करेगा उसका जगन्य होगा कि विश्व योजना वाले।
विश्व योजना के बाद सपना का कार्य किया है और वहाँ वो सम्यक कृत कृत्य वैदक अवस्था में उत्पन्न हुआ है। तो क्रोध के जगन्य अनुभाग संक्रामक जीव के सम्यक तो सत्कर्म कदाचित है। यदि पहले ही भव में यानी मनुष्य भव में सपना पूरी करके जन्मा है, सपना पूर्ण करके, तो उसके समय प्रकृति की सत्ता नहीं है। क्षायिक समय दृष्टि सौधर्म से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक उत्पन्न हुआ है, उसका अप्रत्याख्यान का तो जघन्य है, क्योंकि उसके बाद स्वर्गों में कोई विशेष क्रिया होने वाली नहीं अनुभाग को घटाने वाली। ख्याल में आती है ना, जैसे स्थिति एक एक समय से घटेगी अनुभाग में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तो एक क्षायिक सम्यक भी आया है, उसके साथ सम्यक की सत्ता ही नहीं ऐसे हो सकता है। अभी कोई अन्य ऐसा है कृतकृत्य वेदक अवस्था में आया है तो उसका सम्यक का सत्कर्म तो है, कदाचित है कहते हैं, और यदि है तो वह कदाचित संक्रामक है। ऐसा हो सकता है अंतिम समय में उत्पन्न हुआ है, एक ही समय का उदय रूप ही है, उसका संक्रमण कहाँ होगा? आवली प्लस एक समय है तो उसका संक्रमण होगा, आवली में प्रवेश कर चुका है तो उसके विभक्ति के अनुसार उसका जघन्य जघन्य होता चला जाएगा, परंतु संक्रमण नहीं कहेंगे उसका। तो आवली प्लस एक समय की सत्ता वाला यहाँ उत्पन्न हुआ है तो कहेंगे उसका यहाँ संक्रामक है, कहेंगे संक्रामक पे। आवली प्लस दो समय, चार समय, आठ समय अगर उत्पन्न हुआ तो क्या कहेंगे? अजघन्य का संक्रामक है। और मात्र वो
एक समय
यानी जब तक वो अंतर्मूर्त बाकी है कहेंगे, और प्रत्याख्यान का तो जितना है उतना ही रहने वाला है। तो अगर लंबी सत्ता के साथ, लंबी जिसको कहें अधिक निषेकों के साथ कृतकृत्य वेदक उत्पन्न हुआ है, अप्रत्याख्यान का जघन्य चल रहा है और सम्यक्त्व का अजघन्य चल रहा है, ये बात ख्याल में आती है? प्रेरणा में क्या कहा? हम मान लेते कि आवली के ऊपर 10 निषेक बाकी है और नरक में उत्पन्न हुआ है, नहीं नरक में सौधर्म से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक की बात चल रही है, वहाँ उत्पन्न हुआ है तो अप्रत्याख्यान का जघन्य है उसके, और शुरू 10 निषेक बाकी है आवली के ऊपर, तो उसका अजघन्य है
एक समय के लिए।
ख्याल में आती बात? अब बाद में अप्रत्याख्यान का जघन्य ही रहा और ये कम होते 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 आवली प्लस एक समय बाकी है,
जघन्य हो गया,
तो इसका जघन्य हुआ। पहले वाला भी संक्रामक था पर अजघन्य था, अभी भी संक्रामक है परंतु अजघन्य है, बाद में संक्रमण ही मिट जाएगा उसका। तो कदाचित सत्ता है तो कदाचित संक्रामक है, संक्रामक है तो कदाचित अजघन्य का है, कदाचित जघन्य का है, और वहां तो एक एक समय में अनंत वा भाग होता है, तो अजघन्य कितना होगा उसका? तो अनंत गुना। आवली प्लस दो निषेक भी बाकी है तो आवली के ऊपर दूसरे के निषेक में अनंत गुना अधिक है, और एक समय पास होने पर अनंत गुना घट जाता है। इसीलिए कहते हैं यदि संक्रामक है तो जघन्य अनुभाग का भी संक्रामक है और अजघन्य का भी है, और यदि अजघन्य का है तो जघन्य से अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है। इसी प्रकार अनाहरक मार्गणा तक जानना चाहिए। ये अपना यहाँ पर सन्निकर्ष अधिकार समाप्त होता है। अब नाना जीवे ही भंग विचयो दुविहो उपकस्य पद भंग विचयो जहन्न पद भंग विचयो च। नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय दो प्रकार का है, उत्कृष्ट पद भंग विचय और जघन्य पद भंग विचय। नाना जीव विषयक भंग विचय के जघन्य और उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामकों के विषय रूप से दो भेदों का कथन करने वाला यह सूत्र सुगम है। अब इन दोनों भंग विचयों के अर्थपद का कथन करके उसके बाद आगे की प्ररूपणा करनी चाहिए, इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। तेसिम अर्थपदम काउन, उनका अर्थपद करके प्ररूपणा करनी चाहिए, यानी अर्थपद ने कुछ नियम रूप जो कुछ बताएंगे यहाँ पर। अनंतर पूर्व कहे गए उत्कृष्ट पद भंग विचय और जघन्य पद भंग विचय का अर्थपद करके अनंतर उसकी ओघ प्ररूपणा और आदेश प्ररूपणा करनी चाहिए, इस प्रकार उक्त सूत्र का अर्थ के साथ संबंध है। वह अर्थपद क्या है उसे कहते हैं। जो उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक होते हैं वे अनुत्कृष्ट अनुभाग के असंक्रामक होते हैं, यानी किसी एक समय में जो उत्कृष्ट का संक्रमण कर रहे हैं उसी समय में वो अनुत्कृष्ट का कैसे करेंगे, तो वे असंक्रामक हैं। जो अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक होते हैं वे उत्कृष्ट अनुभाग के असंक्रामक होते हैं, यानी नाना जीवों में जो देख रहे हैं जो जीव उत्कृष्ट का कर रहे हैं वो तो उत्कृष्ट का ही कर रहे हैं, उसी समय वो अनुत्कृष्ट का नहीं कर रहे। जिनके सत्कर्म है उनका प्रकरण है, क्योंकि कर्म रहित जीवन से प्रयोजन नहीं है, यानी जिनकी सत्ता में वो है उसी की बात यहाँ बता रही है। इसी प्रकार जघन्य और अजघन्य की अपेक्षा भी कथन करना चाहिए, यानी जो जघन्य के संक्रामक है वो अजघन्य के असंक्रामक है, जो अजघन्य के संक्रामक है वो जघन्य के असंक्रामक, जघन्य के संक्रामक है तो अजघन्य के असंक्रामक। इस प्रकार अर्थपद का कथन करके उत्कृष्ट पद भंग विचय का सर्वप्रथम निर्देश करते हैं। उत्कृष्ट की अपेक्षा क्या सभी जीव करेंगे कि नहीं करेंगे उसकी बात करेंगे। अब ये उत्तर प्रकृति की बात चल रही है, मोहनीय में इन जनरल बात करनी है तो बात अलग थी। अब हर एक प्रकृति पर उत्कृष्ट के संक्रामक क्या सभी जीव है क्या थोड़े है उसकी बात करेंगे। मिच्छत्तस्य सर्वे जीवा उपकस्य अनुभागस्य असंकामया। कदाचित सब जीव मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग के असंक्रामक होते हैं, यानी ऐसे भी कभी कभी हो सकता है एक भी जीव उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रमण करने वाला नहीं है। हमने उसमें भी देखा था स्थिति विभक्ति में उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाला एक भी जीव न हो चार गति में ऐसा बन सकता है। तो कदाचित सब जीव मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग के असंक्रामक होते हैं, क्योंकि मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक जीव ध्रुव नहीं है। ध्रुव नहीं है ने कभी कभी होगे, अब होगे तो एक होगे क्या अनेक होगे उसकी बात अभी बताएंगे। यह प्रथम भंग है असंक्रामक की ओर से कहेंगे उसका यह ध्रुव भंग है, क्योंकि सभी जीव मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग के असंक्रामक है, ये तो होगा ही हमेशा। अब कहते सिया असंक्रामया च संक्रामो चो। कदाचित नाना जीव असंक्रामक होते हैं और एक जीव संक्रामक होता है, किसके उत्कृष्ट अनुभाग का। पहले में पहले कौन सी पॉसिबिलिटी, सभी अनुत्कृष्ट के संक्रामक है, यानी उत्कृष्ट के असंक्रामक है। दूसरा भंग
एक
ही जीव संक्रामक है बाकी सारे असंक्रामक है, और तीसरा भंग होगा अनेक जीव एक से ज्यादा। तो ये जो दूसरा भी हमने पढ़ा ना, कदाचित नाना जीव असंक्रामक होते और एक जीव संक्रामक होता है, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग के असंक्रामक सब जीवों के बीच कदाचित मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रम रूप से परिणत एक जीव उपलब्ध होता है, यह दूसरा भंग है। और तीसरा, सिया असंकामयाच संकामयाच, ये दूसरे और तीसरे में क्या अंतर है? हाँ प्रेरणा बे, प्राकृत में पढ़ो लक्ष्मी जी। ऊपर ऊपर प्राकृत में
संकम हो और संकामय, एक वचन और बहुवचन।
असंका मया तो दोनों है, असंका या असंका सया, वो तो मया के चाहिए, वो तो गलती है वहाँ पर, असंका मया चाहिए। हाँ 216 के नीचे, हाँ असंका मया, वो सया हुआ तो मया करना, वो तो ठीक है, आगे कुछ फर्क है दोनों? हाँ वहाँ संका मऊ है और नीचे संका मया है, वहाँ एक जीव है यहाँ अनेक जीव है। नीचे हिंदी में तो उन्होंने खोल कर लिखा है, परंतु प्राकृत में क्या डिफरेंस है वो हम पूछ रहे। तो कदाचित नाना जीव असंक्रामक होते और नाना जीव संक्रामक होते हैं, है बताया, वहाँ एक जीव संक्रामक होता है कहा था, क्योंकि कदाचित उत्कृष्ट अनुभाग के असंक्रामक सब जीवों के मध्य में उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक रूप से परिणत हुए कितने ही जीव उपलब्ध होते हैं, 2, 4, 10 अनेक हो सकते हैं। इस प्रकार यह तीसरा भंग है। तो इसमें भजनीय कौन सा और ध्रुव कौन सा?
ध्रुव भाग तो एक ही है ना?
कौन सा? मिथ्यात्व का, उत्कृष्ट का,
असंक्रामक,
ये ध्रुव है, और संक्रामक ये भजनीय है। तो भजनीय एक है ना, तो तीन करो उसके लिए,
तीन
तो ध्रुव के साथ तीन भंग हो गए। उत्कृष्ट मिथ्यात्व के असंक्रामक
वो ध्रुव है,
यानी उत्कृष्ट नहीं करने वाले वो तो ध्रुव भंग है, यानी वो तीनों में है। एक अकेले उसको लिया, फिर उत्कृष्ट संक्रामक के साथ एक को लिया,
अनेक को,
और उत्कृष्ट संक्रामक वाले अनेक लिए, ये तीन भंग हुए यहाँ पर। इसी प्रकार अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामकों के भी तीन भंग पलट कर करने चाहिए, यथा अभी वहाँ उत्कृष्ट के असंक्रामक कहा, अब कहेंगे सभी जीव अनुत्कृष्ट के संक्रामक है, बात एक ही हुई ना, फिर भी कथन में अनुत्कृष्ट का नाम लिया अभी, इसलिए ये तीन भंग अलग कहेंगे। इसी प्रकार अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामकों के भी तीन भंग पलट कर करने चाहिए, यथा कदाचित मिथ्यात्व के अनुत्कृष्ट अनुभाग के सब जीव संक्रामक है, कदाचित नाना जीव संक्रामक है और एक जीव असंक्रामक है, अनुत्कृष्ट का ही, कदाचित नाना जीव संक्रामक है और नाना जीव असंक्रामक है, अनुत्कृष्ट की बात कर रही हूं। अनुत्कृष्ट का असंक्रामक यानी उत्कृष्ट का संक्रामक, जो ऊपर बातें बताई है जीव ते वही के वही है, उनको अलग नाम से बताया, वहां उत्कृष्ट के असंक्रामक कहा, उन्हीं जीवों को यहाँ अनुत्कृष्ट के संक्रामक का, बात वही की वही है, फिर भी तीन उसके भंग और तीन इसके भंग कहे, अलग अलग जीव नहीं है, वही की वही है, परंतु एक बार उत्कृष्ट की ओर से कथन किया, एक बार अनुत्कृष्ट की ओर से कथन किया। शंका, सूत्र में नहीं कहा गया यह अर्थ कैसे जाना जाता है? उसका समाधान, नहीं क्योंकि उत्कृष्ट भंग विचय से ही इसका ज्ञान करा दिया गया है। ऊपर लिखा ना, कदाचित सब जीव, कदाचित नाना जीव वगैरह बता दिए, तो उसी से ये बात समझ में आ सकती है। एवं शेषानम कम्मानम, इसी प्रकार शेष कर्मों का जानना चाहिए। यह अर्पणा सूत्र सुगम है। इस सामान्य निर्देश से सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व में भी मिथ्यात्व के भंगों का अर्थ प्रसंग प्राप्त होने पर उनमें विशेषता का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। नवरी सम्मत्त सम्मा मिच्छत्तानम संकामगा पूवंति भाणिदवम चाहिए, भाणिदवम में इतनी विशेषता है कि सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व के संक्रामक जीव पहले कहना चाहिए। यानी हमेशा तो उसके उत्कृष्ट संक्रामक जीव तो होगी ही होगी हमेशा, क्योंकि सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग के कदाचित सब जीव संक्रामक है, कदाचित नाना जीव संक्रामक है और एक जीव असंक्रामक है, कदाचित नाना जीव संक्रामक है और नाना जीव असंक्रामक है। जब असंक्रामक कहते हैं तो उसकी सत्ता होते हुए भी असंक्रामक समझने चाहिए, या उसके यहाँ उत्कृष्ट कर रहे हैं तो जो सपना कर रहे हैं अनुत्कृष्ट हो गए तो उसको भी हम उसमें ले सकते हैं। इसी प्रकार अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामकों के भी विपर्य क्रम से तीन भंगों का आलाप करना चाहिए। इस प्रकार यह विशेष इस सूत्र के द्वारा जतलाया गया है। यानी जहाँ अन्य कर्मों में उत्कृष्ट की बात बताई वैसे यहाँ पर भी उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट की बात ले लेना। यानी उत्कृष्ट के तो मिथ्या दृष्टि भी है स्वामी और सम्यक दृष्टि भी है, और उनकी सत्ता तो रहेगी हमेशा, कभी ऐसा नहीं होगा कि उत्कृष्ट वाला एक भी जीव नहीं है, तो उत्कृष्ट वाले सभी के सभी ये तो बात बनती है। तो कभी कभी अनुत्कृष्ट वाले भी हो गए, जैसे दर्शन मुख की क्षपणा में हो गए। इस प्रकार ओग से उत्कृष्ट भंग विषय समाप्त हुआ। आदेश से सब मार्गनाओं में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है। उत्कृष्ट का ही जो भंग आदेश में अन्य मार्गनाओं की बात जो अनुभाग विभक्ति के समान है। विशेषण आशय है कि जिस प्रकार अनुभाग सत्कर्म की अपेक्षा अनुभाग विभक्ति के आश्रय से मार्गणाओं में भंग विषय का विचार कर आए हैं, उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए। उससे यहाँ अन्य कोई विशेषता नहीं है। अब जहाँ उत्कृष्ट का भंग बंद करते हैं, आवली बीत जाते हैं, उसका संक्रमण होता है, उसको वहाँ ले सकते हैं। जहन अनुभाग संकम भंग विचो, अब जघन्य अनुभाग संक्रम व्यंग विषय का कथन करते हैं। यह सूत्र सुगम है। मिच्छत्त अट्ट कसायाणम जघन्य अनुभागस्य संकामया च असंकामया च, मिथ्यात्व और आठ कषायों के जघन्य अनुभाग के नाना जीव संक्रामक होते हैं और नाना जीव असंक्रामक होते हैं।
एक ही बंद होगा ना,
क्योंकि निगोद वाले भी वो तो हमेशा ही पाए जाएंगे, ऐसा नहीं कि कभी कभी उत्कृष्ट में तो कभी कभी लिया, तो जघन्य करने वाले तो हमेशा ही होगी ही होगी और अजघन्य वाले भी उसी समय होगे ही होगे, तो दोनों को वहां ध्रुव में लेना भंग में। इन कर्मों के जघन्य अनुभाग के संक्रामक और असंक्रामक जीव नाना जीव नियम से है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। तो कहते हैं ऐसा क्यों है? समाधान, क्योंकि एकेंद्रिय संबंधी हत समुत्पत्ति कर्म के साथ जघन्यपने को प्राप्त हुए इन जीवों में जघन्य अनुभाग के संक्रामक और असंक्रामक नाना जीवों के सद्भाव मानने में कोई विरोध नहीं आता। यानी जो एकेंद्रिय संबंधी हत समुत्पत्ति किए हैं उनके तो जघन्य पाया जाएगा, और बाकी अन्य सभी जीव जिनमें इससे ज्यादा है वो सारे अजघन्य वाले हो। शेषानम कम्माणम जहन अनुभागस्य सवे जीवास या असंकामया, शेष कर्मों के जघन्य अनुभाग के कदाचित सब जीव असंक्रामक होते हैं। मिथ्या तो आठ कषाय जो निगोद में होते हैं उसको अलग निकाला, और बाकी तो क्षपण आदि में होते हैं, विसंयोजना में होते हैं, तो उसको कहेंगे कदाचित है। कदाचित सभी असंक्रामक है का
जो पंक्ति होता है,
और जब क्षपणा करने वाले हैं तो कहेंगे वो कदाचित असंक्रामक का तो ध्रुव भंग है ही है, उसके साथ संक्रामक वाले भी, क्योंकि दर्शन मोहनीय मोहिनीय हुआ, मोहनीय दर्शन मोनी और चारित्र मोनी की क्षपणा करने वाले और अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले जीव सर्वदा नहीं पाए जाते, क्योंकि उनका जगन्य तो तभी होता है और वो हमेशा नहीं होते हैं, कभी कभी होगा ना, एक भी जीव नहीं है। सिया असंका माया च संका मोच कदाचित कदाचित हुआ, कदाचित नाना जीव असंक्रामक होते हैं, जघन्य अनुभाग की बात चल रही है, और एक जीव संक्रामक होता है, क्योंकि जघन्य अनुभाग के असंक्रामक ये नाना जीव ध्रुव रूप से और कदाचित जघन्य अनुभाग के संक्रामक रूप से परिणत हुआ एक जीव स्पष्ट रूप से पाया जाता है। यानी बाकी तो जघन्य अनुभाग के असंक्रामक है ही है, क्षपणा करने वाला एक जीव होगा तो वह जघन्य का संक्रामक होगा, और एक से ज्यादा जीव क्षपणा करेंगे तो नाना जीव हो गए। सिया असंक्रामयाच संक्रामयाच कदाचित नाना जीव असंक्रामक होते हैं और नाना जीव संक्रामक होते हैं, क्योंकि जघन्य अनुभाग के असंक्रामक ये नाना जीव ध्रुव रूप से और जघन्य अनुभाग के संक्रामक भाव से परिणत हुए कितने ही जीव पाए जाते हैं। इस प्रकार ओघ कथन समाप्त हुआ। आदेश की अपेक्षा सब कथन अनुभाग विभक्ति के समान है। इस प्रकार भंग विचय समाप्त हुआ। यानी जहाँ जिस मार्गणा में वो क्षपणा होती है उसको वो जघन्य कहेंगे, कभी कभी होता है, और बाकी मार्गणा वाला जघन्य तो वहाँ, जैसे हमने देखा था मार्गणा वाला जघन्य संक्रामक कहाँ होगा, तो नरकों में वगैरह क्या होगा, नीचे के नरकों में अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने पर अन्य कर्मों का जघन्य होगा, मिथ्यात्व का अन्य कषायों का वगैरह, तो वे जीव हमेशा ही पाए जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई तो संयोजना करने वाले पोजिशन में वहाँ है ही है, हमेशा
पाए जाएंगे, कल के असंख्या के बाद काल तक पाए जाएंगे।
क्या
विसंयोजना कर,
एक बार विसंयोजना कर दी है तो उसका जघन्य हुआ ना।
अच्छा,
उसकी बात करने वाले हमेशा नहीं होंगे, करने वालों में अंतर भले हो जाए, परंतु एक बार हो चुकी तो मिथ्यात्व का भी जघन्य हुआ, अनलेस वो मिथ्यात्व में जाएगा उत्कृष्ट बनेगा तो जघन्य होगा, परंतु जब तक अनंतानुबंधी की पोजीशन में है तो नाना जीवन की अपेक्षा कोई ना कोई जीव हमेशा होगा ही, तो उसके जघन्य भी पाए जाएंगे। यहाँ तो नहीं लिखा, परंतु एक फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया। इस प्रकार भंग विचय समाप्त हुआ। यहाँ पर इस पूर्वोक्त कथन के द्वारा सूचित हुए भागा भाग यानी कितने भाग प्रमाण हैं, परिमाण यानी उनका प्रमाण, क्षेत्र और स्पर्शन को अनुभाग विभक्ति के समान जानना चाहिए। विशेषार्थ, यहाँ पर भागा भाग आदि चार प्ररूपणाओं को अनुभाग विभक्ति के समान जानने की सूचना की है, अतः यहाँ पर उन क्रम से उनका विचार करते हैं। यथा भागा भाग दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है, उसका निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से 26 प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक जीव सब जीवों के अनंतवे भाग प्रमाण, तथा अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक जीव सब जीवों के अनंत बहुभाग प्रमाण है। ये बात ख्याल में आई, क्योंकि ये उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक कौन है, 26 की बात है। उत्कृष्ट अनुभाग बंद किया है और आवली के बाद उसका संक्रमण चल रहा है, तो ये कितने हो गए? तो जीव
अनंत
विभाग, अनंत विभाग समान, और बाकी सारे अनुत्कृष्ट वाले हैं। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक जीव सब जीवों के असंख्यात बहुभाग प्रमाण है। जब सब जीव कहते हैं तो सत्ता वाले सब जीव लेना, सभी अनंत जीव नहीं लेना। तथा अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक जीव सब जीवों के असंख्यात विभाग प्रमाण है। यह ओग प्ररूपना है। आदेश से इसी विधि को ध्यान में रखकर घटित कर लेना चाहिए। अब जघन्य का प्रकरण। निर्देश दो प्रकार का है, ओग और आदेश। ओग से मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व मिथ्यात्व सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व और आठ कषायों के जघन्य अनुभाग के संक्रामक जीव सब जीवों के असंख्यात विभाग प्रमाण है। क्योंकि ये करने वाले जीव कितने हैं?
एक अनंत नहीं, सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व।
ये कौन करते हैं? तो संगी पंचेन जी करते हैं। वो कितने हैं? तो असंख्यात है। अब उसके करने वाले भले संख्यात हो गए तो भी वो असंख्यातों का असंख्यातवा भाग हुआ। वो पांच दस कुछ कर रहे हैं।
मिथ्यात्व तो अनंत हो गए ना, क्योंकि वो तो एक इंद्रिय में अंत होता है ना। मिथ्यात्व का तो लक्ष्य पर्याप्त कर लेना है।
प्रमाण में वो अनंत कहेंगे
सब जीवों के असंख्यात विभाग
प्रमाण में, तो उनका प्रमाण कितना है तो अनंत कहेंगे।
हाँ।
अब ये अनंत का कितवा भाग है? तो असंख्यात। तथा अजगण्य अनुभाग के संक्रामक जीव सब जीवों के असंख्यात बहुभाग प्रमाण है। आठ कषा में भी वो चलेगा ना। शेष प्रकृतियों के जघन्य अनुभाग के संक्रामक जीव सब जीवों के अनंत विभाग प्रमाण है। क्योंकि ये तो क्षपणा वाले हैं, वो कितने हैं? तो सब जीवों का अनंत विभाग, यानी जिनकी सत्ता है उसके अनंत विभाग है। मिथ्या तो में असंख्यात भाग क्यों कहा? है तो अनंत, परंतु वो हत समुत्पत्तिक वाले कितने हैं? वे भी अनंत है, परंतु जिनकी जिनकी सत्ता है उसके असंख्यात विभाग प्रमाण अनंत है।
आठ कषाय के भी अनंत ही है।
हाँ, उसके
भी असंख्यात विभाग।
और अन्य प्रकृतियों के क्षपणा वाले कितने हैं? तो सब जीवों के अनंत विभाग प्रमाण। और अजगण्य अनुभाग के कितने हैं? अनंत बहुभाग प्रमाण है। यह ओग प्ररूपणा है। इसी प्रकार विचार कर आदेश से जान लेना चाहिए। आदेश से नहीं जान नारकी है, उनकी मूल संख्या यहाँ असंख्यात है, तो उसके हिसाब से उसका वर्णन होगा। अब परिमाण, ये तो विशेषार्थ में खोलकर बता रहे हैं, वहां तो उन्होंने विभक्ति के समान जानो कहा था। जघन्य और उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओग और आदेश। ओग से 26 प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक जीव कितने हैं?
असंख्यात
है। आप कहेंगे क्या कहते हैं, कभी कभी एक भी जीव नहीं होता, हमने सुना है ना अभी अभी।
हाँ,
तो यहाँ जब जब संख्या बताई जाती है, किसी काल में अधिक से अधिक हो तो असंख्यात होती है। तथा अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक जीव अनंत है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक जीव असंख्यात है। सम्यक तो हुआ है। देखो, जिनके जिनके सत्ता है, सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो,
उत्कृष्ट वाले ही
उत्कृष्ट का अनुभाग संक्रमण कर रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है, प्रमाण कितना है? तो कहते असंख्यात है। और अनुत्कृष्ट के करने वाले कितने हैं? संख्यात कहा, क्योंकि अनुत्कृष्ट कौन करता है? उसकी क्षपणा का प्रारंभ जिसने किया है वो अनुत्कृष्ट हो जाते हैं। यह ओग प्ररूपणा है। इसी प्रकार आदेश से विचार कर जान लेना चाहिए। ये तो उत्कृष्ट की बात हुई। अब जघन्य का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओग और आदेश। ओग से मिथ्यात्व और मध्य की आठ कषायों के जघन्य और अजघन्य अनुभाग के संक्रामक जीव अनंत है। ऊपर उसको असंख्यात्व भाग कहा था, याद है ना, भागा भाग में असंख्यात्व भाग कहा था, टोटल अनंतों का असंख्यात्व भाग किया है, तो उनकी संख्या कितनी है?
अनंत है,
तो कहते अनंत है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग के संक्रामक जीव संख्यात है, क्योंकि क्षपणा करने वाले संख्यात हो गए, तथा अजघन्य अनुभाग के संक्रामक जीव असंख्यात है। जब अजघन्य कहते हैं सम्यक सम्यक मिथ्यात्व, तो चारों गतियों के आ गए उसमें, और सम्यक दृष्टि भी है, मिथ्या दृष्टि भी है, जिनके उनकी सत्ता है। अनंतानुबंधी चतुष्क के जघन्य अनुभाग के संक्रामक जीव असंख्यात है, तथा अजघन्य अनुभाग के संक्रामक जीव अनंत है, क्योंकि जो अनंतानुबंधी की जघन्य हमने देखा था ना, संयोजना के एक अवली बाद होता है,
अवली के अनंत पे प्राप्त प्रमाण, अवली का असंख्यात पे प्राप्त प्रमाण होगा
क्या,
या असंख्यात का प्रमाण
असंख्यात है, इतनी बात हम पूछेंगे। चार संज्वलन और नौ नौ कषायों के जघन्य अनुभाग के संक्रामक जीव संख्यात है, क्षपणा करने वाले, तथा अजघन्य अनुभाग के संक्रामक जीव अनंत है। ये संख्यात के अगेंस्ट अनंत लिया, यह ओग प्ररूपणा है, इसलिए आदेश से विचार कर जान लेना चाहिए। आदेश से जान लेना चाहिए, जहां असंख्यातों की संख्या है वहां असंख्यात है, ऐसा बता देंगे। अब क्षेत्र दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओग और आदेश। ओग से 26 प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक जीवों का क्षेत्र लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, तथा उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक जीवों का क्षेत्र सर्वलोक है।
असंक्रामक का ना,
असंक्रामक चाहिए। हाँ, दूसरे में पूरा लोग जहाँ लिखा है ना, वहाँ असंक्रामक चाहिए, क्योंकि ऊपर उत्कृष्ट अनुभव के संक्रामक जीव बता दिए और ये असंक्रामक है। जो उत्कृष्ट का नहीं करे वो सारे अनुत्कृष्ट वाले। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक जीवों का क्षेत्र लोक के असंख्यात भाग प्रमाण है, यह ओघ प्ररूपना है, क्योंकि उसके तो हमने देखा ना कहाँ कहाँ कितने जीव है, तो थोड़े जीव है उसके। इसी प्रकार विचार कर आदेश से जान लेना चाहिए। जघन्य का प्रकरण है, निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मिथ्यात्व और आठ कषायों के जघन्य और अजघन्य अनुभाग के संक्रामक जीवों का क्षेत्र सब लोक है, मिथ्यात्व और आठ कषायों का। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के जघन्य और अजघन्य अनुभाग के संक्रामक जीवों का क्षेत्र लोक के असंख्यात्व भाग है। शेष प्रकृतियों के अजघन्य अनुभाग के संक्रामक जीवों का क्षेत्र लोक के असंख्यात्व भाग प्रमाण है, तथा जघन्य अनुभाग के संक्रामक जीवों का क्षेत्र सब लोक है, यह ओघ प्ररूपणा हुई। इसी प्रकार विचार कर आदेश से जान लेना चाहिए। यहीं रुकेंगे, अब इस स्पर्शन की बात कल पढ़ेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देतो। प्रणव।